Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
आपको आत्मबोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ, कामना की निवृत्ति हुई, तो उस समय भी आप आनंदित होंगे, लेकिन वो आनंद इंद्रियजन्य नहीं होगा। वो आनंद कामना के निवृत्तिजन्य भी नहीं होगा, क्योंकि कामना तो है ही नहीं। उस समय भी आप आनंद में होंगे। उस आनंद को परमानंद बोला है। उस आनंद को आनंद नहीं बोला, उस आनंद को परमानंद, और वो अनंत आनंद है। इसलिए आगे एक बड़ा सुंदर शब्द मैं अभी बता दूं, आनंत्यम क्रतोरनंत्य मभयस्य पार। जो परमात्मा का आनंद है ना, वो अनंत आनंद है, अनंत आनंद। और ये दुनिया के आनंद अनंत नहीं है, क्योंकि उसके स्रोत ही अनंत नहीं, उपकरण ही अनंत नहीं, तो उसका आनंद अनंत कैसे होगा? हमारी चाह क्या है? हमारी चाह अनंत आनंद है कि हमारी चाह जो नष्ट होने वाला आनंद है? हम चाहते हैं ऐसा आनंद जो कभी न मिटे, ऐसा आनंद जिसका स्रोत कभी खत्म न हो। और ये दुनिया के जितने भी आनंद हैं, ये आनंद अनंत नहीं है। मिलता है आनंद और उसके बाद फिर कई बार ऐसा होता है ना, पानी टोटी से पानी आ रहा है और आते आते पानी बंद हो गया। क्या करोगे? टोटी हिलाते रहो, टोटी के मारते रहो, आएगा बूंद। अब हमारा भी ऐसा ही होता है, हमारा भी ऐसे ही होता है। संसार में जी रहे हैं, संसार के पदार्थों से आनंदित हो रहे हैं, और आनंद मिलते मिलते उसी समय टोटी बंद हो जाती है। और फिर क्या करोगे? हिलाओ डुलाओ, बोया और आनंद हो, कोई देगा? क्यों शाह जी, कोई देगा आनंद? परेशान हो जाओगे। आप सामने वाला आपको आनंद देने वाला नहीं है, क्योंकि आप वो टोटी बंद हो चुकी है। अंदर का अर्थ ना करो, लेकिन अब सामने वाला आपको आनंद देने वाला नहीं है। कारण स्पष्ट है, ये सत्य है। आज बालक नचिकेता को आचार्य यम कह रहे हैं कि तुम इस सत्य को जानते हो। अनंत आनंद तो केवल एक आत्मा परमात्मा है, और ये दुनिया के जितने भी आनंद हैं, ये कब दुख में बदल जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। इस सत्य को हमें समझना है और कुछ नहीं करना है। आपको संसार में यदि सुखी होना है तो आप सत्य को समझ लीजिए और कुछ नहीं। सत्य को समझना है, और समझ के साथ हमारा जीवन शुरू हो जाता है। समझ के साथ हमारे जीवन में रूपांतरण परिवर्तन शुरू हो जाता है। आप समझ लीजिए, सत्य यही है। दुनिया के पदार्थ हमें अनंत आनंद देने में समर्थ नहीं है, और हमारी चाह अनंत आनंद है, और वो परमात्मा के बिना संभव नहीं। और संसार का कोई आदमी आपको दुख देने लगे, आप इस ज्ञान को सामने रखना। संसार का कोई व्यक्ति आपको सुख न देने लगे तो आप इस सत्य को सामने रखना, संभव नहीं है। संसार के पदार्थ हमें आनंद देते ही रहे, ये संभव ही नहीं। और असंभव को संभव कराने का प्रयत्न ही हमें दुखी देता है, हमें दुख देता है, हमें दुखी कर देता है। वो दुखी कर देता है, इसके मूल में हमारा सोच है, हम असंभव को संभव करना चाह रहे हैं। जो कभी संभव नहीं, उसको संभव करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं, यही हमारे जीवन का दुख है। हम कोशिश कर रहे हैं सामने वाला हमें आनंद ही आनंद दे, हमें कभी दुख न दे, और ये संभव है क्या? ये तो कभी संभव नहीं है। अच्छा, आप सामने वाले से क्यों, आप अपने से क्यों नहीं समझते हैं? सामने वाले को आप आनंद देना चाहते हैं, आप देते हैं क्या? और देना भी चाहते तो आप कितना देर तक दोगे? आप संकल्प करके जाना, आज मैं अब जहां रहता हूं, जिनके साथ रहता हूं, मैं अब निरंतर उन्हें आनंद ही आनंद प्रदान करूंगा। मैं शब्द से, व्यवहार से, क्रियाओं से मैं कभी सामने वाले को दुख नहीं दूंगा, आज संकल्प करके जाना। और वो आपका संकल्प कब तक रहेगा? आप उब जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप उसको दुख नहीं दे पा रहे हो। आप चाहे तो भी आप सामने वाले को सुख ही सुख नहीं दे सकते हैं। आप चाहेंगे कि मैं सुख दूं और आप देंगे दुख, क्योंकि संभव नहीं। यहां स्रोत नहीं है, अनंत आनंद का स्रोत नहीं है, यहां पीड़ा है। ये स्वभाव है, ये हमारे शरीर का, ये मन का, ये प्रकृति का स्वभाव है। सुख और दुख स्वभाव है। प्रकृति आपको सुख देगी, थोड़े क्षण में दुख देगी, थोड़े क्षण में सुख देगी। आपके हाथ में नहीं है सामने वाले को निरंतर आनंद देने का। तो आप क्यों सोचते हैं कि सामने वाला हमको निरंतर आनंद दे? आप इस सत्य को क्यों नहीं समझते हैं? और इस सत्य को यदि आप समझ ले तो आप कभी शिकायत ही नहीं करोगे, और आपके अंदर फिर वो स्रोत शुरू होगा जो अनंत का, जो आत्मा का। क्योंकि आपको मालूम पड़ा है, आपको शिकायत नहीं है। आप सुख में भी वैसे ही हैं और दुख में भी। आपको मिलने लगा दुख तो आप क्या समझेंगे? बिजली चली गई। समझ गए कि नहीं? आप ये समझना, ये उल्टा हो गया है। आप ये प्रकृति का चक्र है। अभी बारिश हो रही है और बारिश के बाद ठंडी आएगी, और ठंडी के बाद आप समझ लीजिए इस ऋतु के चक्र को आप समझ लीजिए। आप समझेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। आपको गर्मी लग रही, आप समझना, हाय हाय गर्मी लग रही, गर्मी, अरे गर्मी का दिन है तो गर्मी नहीं लगेगी क्या? आप गर्मी के दिन में तो गर्मी लगेगी, और गर्मी लगेगी तभी गर्मी की सार्थकता है, गर्मी का होना है। नहीं तो गर्मी का होने का मतलब क्या है? आपको गर्मी का दिन में भी गर्मी न लगे, ठंडी के दिन में ठंडी न लगे, और बारिश के दिन में थोड़ा जुकाम ना हो। आप सोचते क्या है कि बारिश में भी भींगे, उसका भी आनंद ले और फिर जुकाम भी ना हो? ये ऋतु का चक्र है, ये प्रकृति का चक्र है, ये ईश्वरीय चक्र है, ये चलता है। आप संसार में रह रहे हैं, थोड़ा आनंद मिला, सोचना अब ऋतु बदल गई, खुश होना। और जब आपको दुख मिलने लगे सामने वाले, समझना थोड़ा ऋतु बदल गया है। और उस समय भी आप आनंद का अनुभव करना, दुख में भी आनंद का अनुभव व्यक्ति करता है यदि व्यक्ति का चित्त सजग होता है। आप विवेक में होते हैं, आप सत्य को समझने वाले होते हैं, तो आप दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं। आहा, बहुत अच्छा है। एक बार की बात है, सुकरात बहुत बड़ा दार्शनिक था, बहुत बड़ा दार्शनिक एथेंस का, अब हमारे दृष्टि से नहीं, वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा दार्शनिक था। लेकिन उसकी पत्नी अच्छी नहीं थी, और वो दिन भर उनको गाली देती थी दिन भर। अब वो तो बेचारे सोच में डूबे रहते हैं, लिखने पढ़ने में डूबे रहते हैं, लोगों के प्रश्नों के समाधान देने में डूबे रहते थे। दार्शनिक, संसार की प्रवृत्ति नहीं थी। और वो पत्नी बार बार कहते ये करो वो करो ऐसा वैसा, परेशान करते थे। एक दिन की बात है, सुकरात कुछ लिख रहे थे, उसके पत्नी ने बहुत बोला, वो झाड़ू लगाती जा रही थी, बहुत बोला, झाड़ू लगाते लगाते बोलती जा रही थी, कहो सुनो मेरी बात, सुन नहीं रहे हो। लेकिन ये तो मस्ती में थे अपने, तो नारायण उन्हें टोकरी में बहुत सारा कचरा भर के बाहर ले जाना चाह रही थी फेंकने के लिए, और जोर की आवाज लगा दी और उन्हें पूछा कि मेरी बात सुन रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। उसको बड़ा गुस्सा आया और पहुंच गई और जितना कचरा था सारा कचरा उसके सिर पर डाल दिया। यदि आपके साथ हो तो आप क्या करोगे? आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? और सुकरात ने क्या किया? सुकरात उठ के खड़े हो गए, हंसने लगे, और हंसते हुए उन्होंने कहा कि देवी तुमने तो आज गजब कर दिया। मैंने आज तक यही सुना था कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है, लेकिन आज आश्चर्य हुआ, बादल गरजे भी और बरसे, तुम गरजी भी और तुम बरसी भी। बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आज तुमने तो उल्टा कर दिया, गजब का, हंसने लगे। अच्छा बताओ, जब वो हंस रहे थे तो पत्नी ने क्या सोचा होगा? अरे कुछ नहीं, वो टोकरी फेंक के खड़ी हो गई, बोली बड़ा देर लगे और उसका सारा क्रोध शांत हो गया और वो कहने लगी तुम इतने अच्छे हो और उसके बाद भी तुम मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हो। आप समझ गए, उसका मन बदल गया और उन्होंने उस घटना को इतना सहज लिया, उस कचरे को भी सहज लिया, प्रभाव पड़ा उनके पत्नी के ऊपर। वो सोचने लगी मैंने कचरा डाला और उसके बाद इनको बुरा नहीं लगा। कितने महान हैं, कितने समझदार हैं ये। और उस समय उठ करके गाली गलौज करना शुरू कर देते तो और एक कचरा उठा के डाल देती, कोई कचरे की कमी थी क्या? इसलिए नारायण, जब सत्य का बोध हमें होता है तो सत्य का बोध हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है और हम सहिष्णु हो जाते हैं। वास्तविक तितिक्षा का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में विवेक के जागरण के बाद ही होता है। उस समय दुनिया को सहने की क्षमता हमारे में विकसित हो जाती है। इसलिए सत्य को समझना बहुत अनिवार्य है। आप सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग का पहला जो प्रभाव है ये विवेक शक्ति के जागरण का है। सत्संग का पहला प्रयोजन है विवेक शक्ति का जागरण। हम समझ गए सत्य क्या है। आज जिसे सत्य को हम समझेंगे यथार्थ रूप से तो आप समझदार होंगे, आचरण में समझदार होंगे। आपके ऊपर कोई दुख आया आप समझेंगे, अब ये प्रकृति का नियम है, सुख और दुख ठीक है। कभी स्वास्थ्य आएगा और कभी अस्वास्थ्य आएगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, कभी सम्मान हो हमेशा ही हमारा अपमान या सम्मान संभव नहीं है। और कई बार आपका कोई अपमान न भी करे तो भी यह मन का सर्कल है, वो पूरा कर लेता है। ये मन जो है ना अपना पूरा कर लेता है। आपको अपमानित होने के लिए किसी के अपमान की आवश्यकता नहीं है। आपको अपमान महसूस करने के लिए किसी के द्वारा अपमानित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी के द्वारा अपमानित न किए जाने पर भी हम अपमान महसूस कर सकते हैं। सामने वाला बहुत अच्छा है, आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन आप सोचेंगे ये तो मेरा अपमान कर रहा है। आपको ऐसी बात आप घुमा के आपका मन आपको अपमानित महसूस करने के लिए प्रेरित करेगा, कोई ना कोई बात उठा देगा वहां से, कोई ना कोई बात। आपको दुखी होना है ना, तो आपके सामने भोजन है, आप परेशान, बेमतलब परेशान, बोले नमक यहां नहीं, यहां क्यों डाला? आपको परेशान होना है तो आप परेशान होने का वो सर्कल कैसे पूरा करते हैं? थाली में नमक डाला तो आप क्या बोलोगे? यहां डालना था, यहां क्यों डाला? शुरू हो गया, आप दुखी होना शुरू हो गए और सामने वाले को बोलेंगे तुमको नमक डालना नहीं आता है, कहां इतना सुंदर भोजन बना है और सामने वाले ने थोड़ा सा गलती कर दी, थोड़ा सा नमक वहां डालना था वहां डाल दिया, आप परेशान। आपको सामने वाले ने चावल परोसा, आप क्या बोलोगे? वो ऐसा परोसना है? कुछ भी बोले, ज्यादा परोस दिया? अरे बोले इतना कम परोस दिया, कमाल है। आपको दुखी होना है, आप उसका कोटा पूरा कर लोगे, दुखी होने का कोटा पूरा कर लोगे। इसलिए सत्य को समझना है और सत्य को समझने के बाद परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। इसलिए सत्य यही है। हमारी कामना की निवृत्ति इस संसार के भोग्य पदार्थों से नहीं है। कभी हम अपनी कामना की पूर्ति संसार के पदार्थों से नहीं कर सकते हैं। कामना की निवृत्ति का उपाय है आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, और कोई उपाय नहीं। इसलिए नचिकेता को आचार्य यम कहते हैं कामस्य आप्तिम, काम की परिसमाप्ति जो परमात्मा, ये संसार नहीं, इस सत्य को आप समझ गए हैं। और जगताम प्रतिष्ठा, आप जिसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं ये कौन है? परमात्मा। जगताम प्रतिष्ठा, ये जगत की प्रतिष्ठा है, जगत का आधार है, जगत का अधिष्ठान है, वो आत्मतत्व परमात्म तत्व, वो सत्य है, संपूर्ण कल्पनाओं का मूल है। आप जहां भी जाओ उसके मूल में परमात्मा है और आप उस मूल को परमात्मा को चाहते हैं क्योंकि सत्य को आपने समझ लिया। क्रतुर अनंत्यम, और यज्ञ का फल अनंत वो परमात्मा है। यहां दो बातें कहना चाह रहे हैं, आप यज्ञ से क्या चाहते हैं? आप अनंत फल चाहते हैं कि आप मिटने वाला फल चाहते हैं? ये दोनों हैं। आपके जीवन में कर्म है, आप परमात्मा के चरणों में गए, आपने प्रार्थना की, अनुष्ठान किया और भगवान से कहा कि प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता हूं, आपके बिना कुछ नहीं चाहता हूं, तो आपके प्रार्थना का फल अनंत हो गया क्योंकि आपने अनंत को चाहा। अनंत की चाह में अनंत फल में ले जाती है। आपने किया साधना जब और प्रभु को चाहा तो आपका फल अनंत हो गया। और प्रार्थना के बाद आपने भगवान को कहा कि मुझे थोड़ा धन प्रदान करो, थोड़ा स्वास्थ्य प्रदान करो, तो आपका जो फल है प्रार्थना का फल अनंत नहीं रहा, फिर प्रार्थना का फल नश्वर हो गया। इसलिए छोटा सा कर्म भी अनंत फल के प्रति कारण बन जाता है यदि हमारी कामना अनंत की हो, और बहुत बड़ा कर्म और अनुष्ठान भी नश्वर फल के प्रति कारण हो जाता है यदि हमारी कामना नश्वर की हो। इस यज्ञ करते हैं आप, बहुत सारे कर्म करते हैं, और उस कर्म का फल आप क्या चाहते हैं? निष्काम अकाम है, परमात्मा चाहते, तो आपका फल अनंत हो गया। जैसे किसी को आपने एक लोटा जल दे दिया और उस लोटे भर जल के बदले आपने कहा भैया ये मेरा काम कर दो, आपका फल नश्वर हो गया। और लोटा भर जल देने के बाद आप भूल गए और उससे आपने कुछ भी नहीं चाहा, आपका फल अनंत हो गया। ये निष्काम कर्म, कर्म की निष्कामता हमें अनंत फल में ले जाती है। इसलिए कहते क्रतो अनंत्यस्य, क्रतु माने यज्ञ, और यज्ञ आदि का जो फल है वो परमात्मा आपने चाहा है, संसार के पदार्थ आपने नहीं चाहे। इसलिए यज्ञ भी यदि निष्काम भाव से किया जाता है तो यज्ञ परमात्मा के प्राप्ति के प्रति कारण बन जाता है। आप दान, यज्ञ, आपके जीवन के जो भी धर्म हैं आप निष्काम भाव से करते हैं, वो सारे धर्म सारे कर्म हमें अनंत, हमें ईश्वर के भक्ति में, ईश्वर के फल रूप में ले जाते हैं। अभयम, अभयस्य पारम, आपने जाना अभय की पराकाष्ठा वो परमात्मा है। ये दुनिया के पदार्थ द्वैत हैं, और द्वितीयाद्वय भयम भवति, द्वितीय दूसरे से द्वैत से हमारे जीवन में भय मिलता है। ये जहां पर भी भय है ना, ये द्वैत जन्य है, द्वैत मूलक है, आप डरते हैं। जहां दो होता है ना, द्वैत खड़ा होता है, तो वहां भय पैदा हो जाता है। आप अपने मित्र के साथ हैं कमरे में और बहुत गहरा प्रेम है, एकत्व है, अब आपको डर नहीं लगेगा, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आप सोएंगे, आराम से सोएंगे, दरवाजा बंद है, आप अपने मित्र के साथ एक कमरे में आप शयन कर रहे हैं। लेकिन झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और ऐसा झगड़ा का मित्रता खत्म हो गई तो आप सोओगे क्या? आप सोचेंगे पता नहीं सो और ये मारने डाले मुझे, अब द्वैत पैदा हो गया। जहां पर भी द्वैत है वहां से दुख शुरू है, जहां पर भी द्वैत है वहां भय शुरू है। हम डरते हैं, ईश्वर से डरते हैं, क्यों? क्योंकि वहां द्वैत है, और द्वैत खत्म हो गया, ईश्वर के साथ आपकी मैत्री हो गई। कितना भी बड़ा, अच्छा शेरनी का बच्चा है, शेरनी से डरता है क्या? अरे उसका कान पकड़ के भी खींचता है, काटता भी है, उसके पीठ पर भी चढ़ जाता है, वहां भय है क्या? नहीं है, क्यों? वहां अद्वैत है, वहां एक होने का भाव है। और जहां पर भी अद्वैत है नारायण वहां अभय है। इसलिए नचिकेता को कहते हैं आचार्य यम कि तुमने जाना है वह अभय की पराकाष्ठा केवल एक परमात्मा है, और ये दुनिया के जितने पदार्थ हैं ये सारे भय को पैदा करने वाले हैं। और ये दुनिया के पदार्थों को आपने छोड़ दिया, आपने जाना स्तोम महत उरुगायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा, ये दुनिया के पदार्थ हमारे पास आएंगे तो क्या करेंगे मालूम है? और क्या होगा, बहुत सारी संपत्ति होंगी, तो स्तुतिगान करने वाले कुछ लोग होंगे, हाथ जोड़कर हमारे सामने खड़े होने वाले कुछ लोग होंगे। अरे यही तो सुख है, और क्या है, और क्या है, पदार्थों का होना और क्या है, थोड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन ये सत्य नहीं है। धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यंत त्राक्षी, तुमने बड़े धैर्य से धृति को जीवन में धारण कर, विवेक को जीवन में धारण कर, इन सारे पदार्थों का तुमने त्याग कर दिया। अत्यस्त्राक्षी माने तुमने त्याग कर दिया है, और ऐसा त्याग नहीं ऊपर ऊपर मन से विचार पूर्वक सत्य को समझकर सत्य को स्वीकार किया है, और असत्य को समझकर असत्य का त्याग कर दिया है। इसलिए नचिकेता तुम बहुत महान हो। आज बालक नचिकेता की प्रशंसा कर रहे हैं, आचार्य यम अपने शिष्य की प्रशंसा कर रहे हैं। शिष्य हो तो ऐसा जिसमें त्याग हो, जिसमें वैराग्य हो और परमात्मा को समझने की क्षमता हो। केवल वैराग्य से काम नहीं चलता है, उसको समझने की क्षमता भी तो होना चाहिए। और आज बालक नचिकेता में दोनों दिखाई दे रहे हैं, क्षमता भी समझने की और त्याग और वैराग्य। इस श्लोक में नचिकेता की प्रशंसा की, अब अगले श्लोक में आत्मज्ञान की प्रशंसा करेंगे। तम दुर्दर्शम गूढ़ मनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। ये 12वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आत्मज्ञान की प्रशंसा, वास्तविक कठोपनिषद का ज्ञान जो है ना, अब यहीं से शुरू होने वाला है। आगे बताएंगे वो क्या तत्व हैं, यहीं से उपदेश करेंगे। अभी तक तो साधक के रूप में, एक शिष्य के रूप में बालक ने नचिकेता की प्रशंसा की, ब्रह्मज्ञान की प्रशंसा की, और इसके बाद पुनः एक बार बालक ने नचिकेता प्रश्न करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अब जल्दी करो, अब बहुत हो गई प्रशंसा, अब मुझे आत्मज्ञान का उपदेश करो। और उसके बाद बालक ने नचिकेता को उपदेश करेंगे। मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूं। सभी श्रोताजनों के हृदयस्थ परमात्मा को नमन करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना और बुलाया, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने चाहा फिर कभी मिलेंगे, और न भी मिले तो आत्मरूप से हम सब लोग मिले हुए हैं। अभी आप सीधे बैठ जाएं, जिसे एक माला हम लोग जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
नारायण 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 नारायण। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम। कठोपनिषद की बहुत गहरी बातें स्वामी जी ने हमें समझाई, एक एक शब्द स्वामी जी ने गहराई में हमें समझाया। नचिकेता हमारे लिए एक आदर्श महापुरुष है। हम सब सत्संग के भाई बहन हैं, हमें भी चाहिए कि हम भी नचिकेता बनने का प्रयास करें। नचिकेता को जीवन नचिकेता को कितना प्रलोभन दिया गया कि संसार के बड़े से बड़े सुख का प्रलोभन उनको दिया गया, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मुझे केवल और केवल आत्मज्ञान चाहिए, केवल केवल परमात्मा चाहिए। हम सब सत्संगी भाई बहन हैं, हम यहां किस लिए आते हैं? सत्संग सुनने के लिए आते हैं, ताकि हमारा कल्याण हो। हमें यही चाहिए कि जो संत यहां आते हैं उनके उद्देश्यों को ग्रहण करके अपने आप को नचिकेता बनाने का प्रयास करें। जो जीवन का परम लक्ष्य है संसार के प्रलोभनों को छोड़कर, ये छोटी छोटी बातें पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इनमें उलझे हुए हैं हम, और जो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उसको हम भूल जाते हैं। मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है कि हम ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें शक्ति दे ताकि हम जो संत यहां आते हैं उनके उद्देश्यों को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारें और सही माने में नचिकेता बन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी ओर से स्वामी जी के चरणों प्रणाम करता हूं। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यवत्। जय श्री कृष्ण।